एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाली किताब पर बात करने वाले हैं, स्ट्रेंथ टू लव।
हाँ, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लिखी हुई, और इसका हिंदी में अगर मतलब समझें तो प्रेम की शक्ति या शायद प्रेम का बल।
बिल्कुल, और ये वो किताब है जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये दिमाग और दिल दोनों को सोचने पर मजबूर करती है।
सही कहा, और ये जानना जरूरी है कि ये कोई कहानी या इतिहास की किताब नहीं है।
अच्छा।
हाँ, ये असल में डॉक्टर किंग के 17 पावरफुल उपदेशों का एक कलेक्शन है।
17 उपदेश?
जी, और ये तब दिए गए थे जब अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट, मतलब नागरिक अधिकार आंदोलन, अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो विचार हैं जो अनुभव की भट्टी में तपे हैं, जिए हुए विचार हैं ये।
और डॉक्टर किंग, उनका नाम ही काफी है, आशा, संघर्ष, बदलाव, इन सबका प्रतीक। वो एक बैप्टिस्ट मंत्री थे।
हाँ, और एक बहुत काबिल धर्मशास्त्री भी थे, और जाहिर है अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले, सबसे प्रतिष्ठित नेता। उनकी आवाज में एक अलग ही नैतिक शक्ति थी, है ना?
बिल्कुल, एक करिश्मा था।
हाँ, और उनकी कहानी, उनके ये विचार, मुझे लगता है आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, शायद पहले से भी ज्यादा।
क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको?
क्योंकि ये किताब उस बुनियादी सवाल से जूझती है कि वो लोग जिनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, जो जुल्म सह रहे हैं, वो नफरत और हिंसा का रास्ता अपनाए बिना अपने हक और सम्मान के लिए कैसे लड़ सकते हैं।
ये सवाल तो आज भी दुनिया में कई जगह गूंज रहा है।
बिल्कुल, और डॉक्टर किंग का जो जवाब था ना, वो सच में क्रांतिकारी था।
क्या कहा वो जवाब?
उन्होंने कहा, रास्ता है प्रेम की अंदरूनी शक्ति को जगाने में, उसे विकसित करने में।
प्रेम मतलब संघर्ष और अन्याय के बीच प्रेम की बात, ये तो सुनने में ही कितना अलग और चुनौतीपूर्ण लगता है।
यकीनन, और यहीं ये समझना बहुत जरूरी है कि किंग जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, वो कोई कमजोर, भावुक या सिर्फ रोमांटिक टाइप का प्यार नहीं है।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने ईसाई धर्मशास्त्र का एक खास शब्द इस्तेमाल किया, अगापे।
अगापे?
जी, अगापे, ये एक एक्टिव, हिम्मत वाली और कह सकते मुक्ति देने वाली शक्ति है। ये एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम है जो बिना किसी शर्त के दूसरे का भला चाहता है, चाहे सामने वाला कैसा भी बर्ताव करे, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो।
बाबरे, दुश्मन से भी प्रेम?
हाँ, और ये कोई भावनाओं का उबाल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, इच्छा शक्ति से चुना गया रास्ता है।
अगापे, ये शब्द ही अपने आप में गहरा है, मतलब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सचेत चुनाव, एक अनुशासन।
बिल्कुल।
चलिए, इस गहरी सोच को और इसके पीछे जो असाधारण इंसान थे डॉक्टर किंग, उनकी जीवन यात्रा को थोड़ा और समझते हैं। कहाँ से आए थे वो, क्या पृष्ठभूमि थी उनकी?
डॉक्टर किंग के पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है। उनका जन्म 1929 में अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जहां कह सकते हैं धर्म और सामाजिक न्याय की बातें बचपन से ही माहौल में थीं।
अच्छा।
उनके पिता भी बैप्टिस्ट मंत्री थे, तो वो भी उसी राह पर चले, लेकिन वो सिर्फ वहीं नहीं रुके, उनकी ज्ञान की प्यास बहुत थी।
मतलब?
पढ़ाई लिखाई।
हाँ।
उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से सिस्टमैटिक थियोलॉजी में PhD की।
सिस्टमैटिक थियोलॉजी, ये क्या होता है?
आसान शब्दों में कहें तो किसी धर्म की जो मुख्य मान्यताएं हैं, विचार हैं, सिद्धांत हैं, उनका एक लॉजिकल, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना।
अच्छा, मतलब वो सिर्फ एक भावुक वक्ता नहीं थे बल्कि उनके पास अपने विश्वासों की गहरी बौद्धिक समझ भी थी।
बिल्कुल, उनका अकादमिक ज्ञान उनके तर्कों को और मजबूत बनाता था।
और उनके विचारों पर किन चीजों का असर पड़ा, कहाँ से प्रेरणा मिली उन्हें?
कई सारे स्रोत थे, सबसे बड़ा तो ईसा मसीह की शिक्षाएं थीं, जाहिर है, खासकर प्रेम, क्षमा, गरीबों के लिए करुणा, इन बातों पर उनका बहुत जोर था। फिर महात्मा गांधी, गांधी का अहिंसक प्रतिरोध का जो दर्शन था, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना।
गांधी, भारत से अमेरिका तक?
हाँ, किंग ने खुद कई बार कहा कि गांधी से उन्होंने सीखा कि प्रेम के सिद्धांत को सिर्फ निजी रिश्तों तक ही नहीं रखना है, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने के लिए एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करना है।
अच्छा, और कोई?
हाँ, कुछ पश्चिमी दार्शनिक भी थे जैसे हेनरी डेविड थोरो, जिन्होंने सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस की बात की थी। तो कई विचारों का संगम था।
और फिर वो सिर्फ सोचने वाले विचारक नहीं रहे, उन्होंने एक्शन भी लिया, है ना? वो SCLC के अध्यक्ष बने।
बिल्कुल, सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, ये संगठन सिविल राइट्स मूवमेंट का एक तरह से इंजन था। और मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट जैसा जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ,
हाँ हाँ सुना है उसके बारे में,
उसके पीछे किंग की सोच, उनकी रणनीति, उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सबका बड़ा हाथ था। उन्होंने लोगों को सिर्फ प्रेरित नहीं किया, उन्हें ऑर्गेनाइज भी किया।
ये जानना भी जरूरी है कि स्ट्रेंथ टू लव के ये उपदेश किस माहौल में लिखे गए।
बहुत जरूरी, ये कोई आराम से लाइब्रेरी में बैठकर लिखे गए निबंध नहीं है।
नहीं,
बिल्कुल नहीं। इनमें से कई तो तब लिखे गए जब किंग जेल में थे, या जब उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। उनके घर पर बम फेंके गए।
ओह
हाँ, जैसे उनका वो मशहूर खत है, लेटर फ्रॉम बर्मिंगहम जेल, वो भी तो जेल से ही लिखा गया था। उसमें भी प्रेम, न्याय, अहिंसा के यही गहरे विचार हैं। तो ये किताबें बातें नहीं हैं, ये भोगा हुआ सच है, झेली हुई पीड़ा है, और उस पीड़ा के बीच अटूट विश्वास है।
इतने संघर्ष और खतरों के बावजूद उनके काम को दुनिया भर में पहचान मिली। 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार।
हाँ, और उस वक्त वो ये पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ये दिखाता है कि उनका कद कितना बड़ा था और उनके संदेश में कितनी यूनिवर्सल अपील थी।
बिल्कुल।
और उनकी विरासत सिर्फ अमेरिका में कानून बदलवाने तक ही सीमित नहीं है। उनका जो अहिंसक प्रतिरोध का तरीका है, वो आज भी दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को रास्ता दिखाता है। और उनकी प्रिय समुदाय यानी बिलवर्ड कम्युनिटी की जो कल्पना है, एक ऐसा समाज जहां गरीबी, भुखमरी, नफरत ना हो, जहां न्याय हो, सबको बराबर मौके मिलें और सब लोग प्रेम और सम्मान से रहें, ये आज भी एक बहुत शक्तिशाली सपना है।
और ये किताब स्ट्रेंथ टू लव उस सपने का, उस विजन का एक तरह से मूल है।
हाँ, कह सकते हैं कि ये उनकी एक्टिविज्म का आध्यात्मिक ईंधन थी।
तो इस पूरे सोच का, इस दर्शन का जो केंद्रीय तत्व है, वो क्या था? कौन सी मूल भावना थी जिसने डॉक्टर किंग को इतनी ताकत दी? अगापे।
हाँ, और ये सिर्फ दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, ये ईश्वर के प्रति प्रेम भी है और खुद के प्रति एक गरिमा, एक सम्मान का भाव भी है, जो आपको अन्याय के सामने झुकने नहीं देता। किंग बार बार कहते हैं कि ये कोई अचानक आई हुई भावना नहीं है, बल्कि एक अनुशासित, इच्छा शक्ति से चुनी हुई सोच है। इसे चुनना पड़ता है, इसे साधना पड़ता है, खासकर तब जब नफरत करना शायद ज्यादा आसान लगे।
और ये प्रेम कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। ये बात आज भी कई लोगों को हजम नहीं होती। शक्ति मतलब तो लोग अक्सर फिजिकल पावर समझते हैं।
बिल्कुल, और यही डॉक्टर किंग की असली प्रतिभा दिखती है। वो कहते हैं कि सच्ची ताकत हथियारों में या हिंसा में नहीं है, असली ताकत है प्रेम को हिम्मत और नैतिकता के साथ इस्तेमाल करने में। अहिंसा कायरता नहीं है, ये सक्रिय प्रतिरोध है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का सबसे मजबूत तरीका। उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से कहा था, एक तलवार जो ठीक करती है।
एक तलवार जो ठीक करती है, वाह।
हाँ, सोचिए, बिना बदले की भावना रखे, बिना नफरत पाले, हिंसा और बेइज्जती सहने के लिए कितना ज्यादा अंदरूनी साहस चाहिए, कितना आत्मनियंत्रण, कितना नैतिक बल चाहिए। ये कमजोरों का रास्ता हो ही नहीं सकता, ये तो आत्मबल में सबसे मजबूत रोगों का रास्ता है।
उन्होंने एक और बड़े दिलचस्प संतुलन की बात की थी, एक कठोर मस्तिष्क और एक कोमल हृदय। ये सुनने में ही संतुलित लगता है, क्या मतलब था इसका?
हाँ, ये उनके प्रैक्टिकल दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कठोर मस्तिष्क मतलब क्रिटिकली सोचने की क्षमता, सच्चाई को बिना किसी भ्रम के साफ साफ देखने की हिम्मत, तर्क और विवेक का इस्तेमाल करना, प्रोपोगेंडा और अंधविश्वास से बचना,
मतलब दिमाग तेज रखना।
हाँ, और सच का सामना करना, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। और कोवल हृदय का मतलब है करुणा, सहानुभूति, दया, सभी इंसानों के लिए गहरा प्रेम और सम्मान, यहाँ तक कि अपने विरोधियों के लिए भी।
और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक का होना खतरनाक है।
हाँ, किंग कहते थे कि अगर दिमाग तो बहुत तेज है, कठोर है, पर दिल कोमल नहीं है, तो इंसान बड़ा क्रूर, हिसाब किताब वाला बन सकता है, दूसरों के दुख दर्द से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ, अगर दिल तो बहुत कोमल है पर दिमाग कठोर नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो इंसान बहुत भावुक, अव्यवहारिक हो सकता है, आसानी से गुमराह हो सकता है, अन्याय के खिलाफ असरदार ढंग से लड़ नहीं पाएगा।
तो दोनों का बैलेंस जरूरी है।
बिल्कुल, एक असरदार नैतिक और सार्थक जीवन जीने के लिए और खासकर सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए ये दोनों जरूरी हैं, साफ सोच भी और गहरी संवेदना भी।
और जैसा आपने पहले भी कहा, उनका लक्ष्य सिर्फ कानून बदलवाना नहीं था, कुछ उससे भी बड़ा था।
हाँ, उनका अंतिम लक्ष्य बहुत गहरा और बड़ा था। सिर्फ भेदभाव खत्म करना काफी नहीं था, उनका सपना था बिलव्ड कम्युनिटी बनाना।
बिलव्ड कम्युनिटी
मतलब एक आदर्श समाज। हाँ, एक ऐसा समाज जहाँ नस्ल, धर्म, क्लास कुछ मायने न रखें, जहाँ सब लोग न्याय, बराबरी, शांति और आपसी सम्मान के साथ रहें। और ये सिर्फ दबे कुचले लोगों की आज़ादी नहीं थी, इसमें जुल्म करने वाले का भी उद्धार शामिल था, उसे नफरत और अन्याय के बोझ से मुक्त करना।
ये तो बहुत बड़ी सोच है, किसी एक ग्रुप की जीत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की बेहतरी।
बिल्कुल, डॉक्टर किंग का जीवन और उनके विचार ये एक यात्रा की तरह विकसित हुए। इस सफर में ऐसे कौन से खास मोड़ थे, टर्निंग पॉइंट्स, जिन्होंने उन्हें इतना बदला और स्ट्रेंथ टू लव जैसी किताब की नींव रखी?
वैसे तो कई मोड़ थे जाहिर है, लेकिन अगर तीन सबसे अहम चुनने हों तो मेरे ख्याल से पहला और सबसे बुनियादी था अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह अपनाना, सिर्फ एक टैक्टिक की तरह नहीं बल्कि जीने के तरीके की तरह।
अच्छा, जैसा हमने कहा, गांधी से प्रेरणा ली, उन्होंने समझा कि ईसा मसीह के प्रेम और क्षमा के उपदेश को सामाजिक बदलाव के लिए एक मास मूवमेंट में कैसे बदले। ये उनके लिए सिर्फ विरोध का तरीका नहीं रहा, ये जीने का, सोचने का, महसूस करने का तरीका बन गया, एक गहरी आध्यात्मिक कमिटमेंट। उनकी किताब में एक चैप्टर भी है अहिंसा की तीर्थयात्रा, पिलग्रिमेज टू नॉन वायलेंस, वो इसी सफर के बारे में है।
गांधी से अहिंसा सीखना और फिर उसे अमेरिका की उस भयानक नस्ली नफरत के बीच अमल में लाना, ये आसान नहीं रहा होगा। उनके अपने अनुभव भी तो बड़े मोड़ रहे होंगे।
बिल्कुल, और यही मेरा दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ है, उत्पीड़न, हिंसा और जेल का सीधा पर्सनल अनुभव। जेल की कोठरी में बैठकर उपदेश लिखना, परिवार पर हमले का डर, लगातार धमकियां, मार पिटाई का सामना करना, इन सब अनुभवों ने उनके धार्मिक विचारों को किताबों से निकालकर जमीन पर ला दिया।
हाँ, थ्योरी से प्रैक्टिकल में।
बिल्कुल, इससे उनके विचारों में एक असाधारण अर्जेंसी आई, सच्चाई आई, गहराई आई। इन्हीं अनुभवों ने प्रेम करने की अंदरूनी शक्ति, स्ट्रेंथ टू लव की जरूरत को सिर्फ एक विचार नहीं रहने दिया, बल्कि एक अनिवार्य जरूरत बना दिया। ये अब सिर्फ सिद्धांत नहीं था, ये रोजमर्रा की कसौटी पर परखी जा रही सच्चाई थी।
ये अनुभव तो इंसान को तोड़ भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसे ताकत बना लिया। और तीसरा टर्निंग पॉइंट क्या मानती हैं आप?
तीसरा मेरे ख्याल से कठोर मस्तिष्क और कोमल हृदय के संतुलन को साफ तौर पर पहचानना और उसे फॉर्मूला बनाना था।
अच्छा, उसे शब्दों में ढालना।
हाँ, ये समझना कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में असरदार और नैतिक लीडरशिप के लिए तेज क्रिटिकल सोच भी चाहिए और गहरी मानवीय करुणा भी, दोनों अनिवार्य हैं। ये सिर्फ भावुक होकर नारे लगाना नहीं था, और ना ही सिर्फ ठंडे दिमाग से विश्लेषण करना था, ये दोनों को साधकर आगे बढ़ना था। ये बैलेंस उन्हें स्ट्रैटेजी बनाने, कठोर मस्तिष्क और साथ ही अपने विरोधियों समेत सबकी इंसानियत को देखने, कोमल हृदय में मदद करता था। किताब का पहला ही चैप्टर इसी बैलेंस पर है। ये उनके प्रैक्टिकल विजडम की कुंजी है, दिखाता है कि न्याय की लड़ाई बिना नफरत के, समझदारी और संवेदना से कैसे लड़ी जा सकती है।
ये विचार तो आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। डॉक्टर किन का जीवन और उनकी ये गहरे विचार आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? आज की इस भागदौड़ वाली अक्सर बंटी हुई दुनिया में हम क्या सीख सकते हैं?
ओ, बहुत कुछ। शायद उनका सबसे मुश्किल सिद्धांत, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अगापे, आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है
आज के जमाने में। कैसे?
सोचिए ना, हमारे अपने रिश्तों में तनाव, ऑफिस की पॉलिटिक्स या फिर सोशल मीडिया पर जो कड़वी बहसें होती हैं।
हाँ, वो तो है।
किंग का मतलब ये नहीं था कि हमें दुश्मनों के लिए प्यार उमड़ना चाहिए या उनके गलत कामों को सही मान लेना चाहिए, नहीं, बल्कि इसका मतलब था दूसरे इंसान को सिर्फ दुश्मन या पराया कहकर उसे पूरी तरह अमानवीय समझने से इनकार करना, उसकी बुनियादी इंसानियत को पहचानना और बदले की भावना का जो विनाशकारी चक्कर है उसे तोड़ने की सचेत कोशिश करना। ये शांति की तरफ पहला कदम है।
और समाज के दबाव में ना आने की बात, भीड़ के साथ ना बह जाने की, उन्होंने कुछ कहा था रूपांतरित गैर अनुरूपतावादी, ये क्या था?
हाँ, ट्रांसफॉर्म्ड नॉन कन्फॉर्मिस्ट। इसका मतलब है ऐसा इंसान जो समाज के गलत रीति रिवाजों, पूर्वाग्रहों या ट्रेंड्स के साथ सिर्फ इसलिए नहीं चलता क्योंकि सब कर रहे हैं।
अच्छा,
अपनी राह चलना। हाँ, पर सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं, रूपांतरित शब्द जरूरी है। ये गैर अनुरूपता किसी ऊंचे नैतिक उद्देश्य और प्रेम से जुड़ी है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया ट्रेंड्स और दोस्तों के दबाव या प्रेशर्स में सब एक जैसे बनते जा रहे हैं, अपने नैतिक कंपास पर टिके रहने की हिम्मत ये एक टाइमलेस सबक है, बहुत जरूरी सबक।
और उनका वो विचार कि हम सब जुड़े हुए हैं, एक ही कपड़े के धागे हैं।
हाँ, भाग्य का एकल वस्त्र, ये आइडिया तो आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है।
कैसे?
उनका कहना था कि हम सब एक ही ताने बाने का हिस्सा हैं। जो कुछ भी किसी एक को सीधे असर करता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह सबको असर करता है। कहीं भी होने वाला अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है। ये हमें हमारी कॉमन इंसानियत और सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, दुनिया में फैली असमानता हो, या मानवाधिकारों का सवाल हो। और उनकी बातें ये भी सिखाती हैं कि निराशा, शैटर्ड ड्रीम्स, उनके एक और उपदेश का टाइटल है, कि पलों में भी उम्मीद कैसे बनाए रखें, टूटे सपनों के बावजूद आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि संघर्ष अक्सर लंबा होता है।
वाकई, ये बहुत गहरे और हमेशा काम आने वाले सबक हैं। इस पूरी बातचीत से अगर हमें तीन मुख्य बातें निकालनी हो, एक इमोशनल, एक इंटेलेक्चुअल और एक यूनिवर्सल, तो वो क्या होंगे?
ये हमेशा मुश्किल होता है चुनना, क्योंकि किंग के विचार इतने गहरे हैं, पर कोशिश करती हूँ। पहला, एक भावनात्मक सबक मेरे लिए, वो है माफी की ताकत, क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति।
माफ करना?
हाँ, किंग ने सिखाया कि माफ करना सिर्फ दूसरों पर एहसान नहीं है, ये खुद को कड़वाहट, नफरत और बदले की भावना के जहर से आजाद करने का तरीका है। और इसे सिर्फ कभी कभार नहीं करना है, बल्कि एक स्थायी मनोवृत्ति, परमानेंट एटीट्यूड बनाना है। ये समझना कि बिना शर्त प्रेम, अगापे और माफी को अपनाने से एक गहरी व्यक्तिगत और भावनात्मक आजादी मिलती है, बाहर के हालात चाहे जैसे भी हों।
खुद की आजादी के लिए माफी, ये बहुत शक्तिशाली विचार है।
दूसरा, एक बौद्धिक सबक, वो ये है कि अगापे प्रेम और अहिंसा सिर्फ ऊंचे नैतिक आदर्श नहीं है, ये सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए बहुत प्रैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक और पावरफुल हथियार भी है।
मतलब ये काम करते हैं?
हाँ, किंग ने इसे बार बार साबित किया। अहिंसा का मतलब चुप बैठना नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ एक एक्टिव, अनुशासित और नैतिक रूप से बेहतर प्रतिरोध है। ये वो तलवार है जो ठीक करती है, ये अन्याय का विरोध भी करती है और साथ ही सुलह और प्रिय समुदाय बनाने का रास्ता भी खुला रखती है। ये दिखाता है कि नैतिकता और असरदार होना दोनों साथ साथ चल सकते हैं।
और तीसरा, यूनिवर्सल सबक।
तीसरा, एक सार्वभौमिक सबक। किसी इंसान का या किसी समाज का असली चरित्र और मजबूती आराम के समय में नहीं पता चलती।
तो कब पता चलती है?
असली परीक्षा तब होती है जब वो चुनौती, संकट, मुश्किल हालात का सामना करता है। मुश्किल वक्त में हम डर, नफरत और स्वार्थ का रास्ता चुनते हैं, या हिम्मत, प्रेम और सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। यही हमारे असली कैरेक्टर को दिखाता है। किंग का जीवन हमें याद दिलाता है कि नैतिक साहस का चुनाव ही इंसानियत को आगे ले जाता है, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
डॉक्टर किंग ने प्रेम को अन्याय के खिलाफ एक सक्रिय रणनीतिक ताकत बनाया। उनके विचार हमें एक तरह से चुनौती देते हैं कि हम अपने इस समय की नफरत, विभाजन और अन्याय का सामना कैसे करें। यह सोचने वाली बात है कि आज की जो जटिल चुनौतियां हैं, सामाजिक, राजनीतिक या हमारी अपनी निजी जिंदगी में, उनमें हम इस प्रेम की शक्ति, इस अगापे और कठोर मस्तिष्क व कोमल हृदय के संतुलन को कैसे रचनात्मक और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।